परेशान न हो अम्मी जान, मेहरान खुद भी जानता है कि उसके जो हालात हैं उनमें रिश्ता मांगने नहीं जा सकता। अरे बताओ ना अपनी पोजीशन।
मेहंदी जरा आहिस्ता, अभी बच्ची जाग जाएगी।
माफ कीजिए,
कैसे हालात?
अरे ये जो हालात,
यही हालात देखें।
वो तुम्हारे बेटे को अपनी बेटी देना चाहते हैं आपके घर, और हालात को नहीं। दूसरी ये कि मेहरान ने जाके वहां बात कर ली है, असली साहब ने बेकार में तो मुझे फोन नहीं किया। इतना भी लोगों को गया गुजरा नहीं समझो। मैं सिर्फ तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम क्यों अकेले वहां गए? तुमने इतना भी नहीं सोचा कि असली साहब क्या समझेंगे? तुम्हें अपनी फैमिली से कोई प्रॉब्लम है?
कसम से मैं उनको सिर्फ अपने हालात बताना चाहता था।
कौन से हालात?
कहो ना अपने हालात, सुनाओ ना कौन से हालात हैं, बताओ।
अपने हालात ना उनसे कहना चाहता था कि फिलहाल मेरे माली हालात अच्छे नहीं है।
आखिर किस लिए? इसलिए कि वो ना उम्मीद हो जाए और तुम्हें इनकार कर दें?
नहीं, मैं सिर्फ उनसे मोहलत मांगना चाहता था ताकि बाद में अपने हालात संवार सकूं।
ये मस्खरापन नहीं है? अकेला उठा है और लोगों के घर गया है ताकि उनको अपने हालात बता सके। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि उन्होंने तुम्हें अपने घर में आने कैसे दिया।
आखिर मुझे बात भी करने दोगे?
आप मुझे एक मिनट बात करने दें, आखिर मैं भी इंसान हूँ।
अम्मी मैंने तो आपसे कहा कि मेरे साथ आए, आप खुद नहीं मानी।
तो अम्मी का ना आना तुम्हारे लिए दलील बन गया कि तुम अकेले उठ के चले जाओ?
माफ कीजिए, गलती की। खुद भी उस वक्त समझ गया था कि गलती की है।
हाँ गलती की है। आओ आप संभालो, दरवाजे पर आए हैं तुम्हें अपनी बेटी देने।
क्यों ना दे, आखिरकार ये काम होना तो है ही है, पहले ही हो जाए तो बेहतर है।
अरे मियाँ किस पैसे से?
अम्मी मुझे अभी शादी थोड़ी करनी है, अगर आप इजाजत दें तो सिर्फ चल के उनके साथ बात करते हैं।
ना समझ लड़के, इंसान के पास पैसा ना हो शादी के अखराजात अदा नहीं कर सकता तो जाके रिश्ता क्यों मांगे, मैं ये जानना चाहती हूँ।
मैंने तुमसे कितनी दफा कहा कि इस काम में दखल मत दो? मैं नहीं कह चुका हूँ कि बच्चों की शादी का खर्चा मेरे जिम्मे है?
ठीक है तो आप ही दें, मुझे कोई लेना देना नहीं है।
अरे अम्मी जान मैं जरा देखती हूँ। अम्मी जान
ये लो बेटा।
अबू जान ये आपके चेहरे के सूजन
नहीं चाहिए, छोड़िए मेरे चेहरे को कुछ नहीं हुआ है।
मेहदी आओ तुम अपने चेहरे पर रखो।
मेहरनुश मैंने कह दिया ना जरूरत नहीं है, छोड़ो ना।
मेहदी देखो इंजीनियर रूही ने हम सबको आर्ट एग्जीबिशन में बुलाया, कल इसी हुलिये में जाओगे तो कितना बुरा लगेगा उसको।
किस आर्ट एग्जीबिशन की बात कर रही हो?
उन्होंने मेरे तुम्हारे और परसु के लिए दावत नामा भेजा है, हमको एक साथ जाना चाहिए। इसको रखो
मेरे रुश, मेरी तरफ से माजरत कर लेना। देखो मेरे जो हालात हैं और मेरे चेहरे का जो हाल है, और दूसरी ये कि मुझे ऐसी जगहों पर जाने का बिल्कुल हौसला नहीं है, तुम खुद ही किसी तरह चले जाओ।
मेहंदी लेकिन क्यों?
अरे पेंटिंग,
लड़के ने जाके खुद काम खराब कर लिया और अब मुझ पर गुस्सा उतार रहे हैं।
अरे अम्मी जान आप भी सिर्फ पैसा ना होने की बात कर रही है ना, तो ऐसे में अब्बू जान ये समझेंगे कि आप उनको ताना दे रही हैं।
अरे कैसा ताना,
क्या कहूँ, शायद वो सोचते होंगे कि आपका मतलब ये है कि वो अपने बेटे की शादी का खर्चा नहीं दे सकते।
तो क्या दे सकते हैं? दूसरा ये कि मुझे मोहसिन से क्या काम है कि उनको ताना दूं। इस लड़के के पास ना घर है ना कोई ढंग का काम है ना आमदनी है। मैं सिर्फ शादी के खर्च की बात थोड़ी कर रही हूँ कि मोहसिन को बुरा लगे।
परस्तु भाभी मेहंदी कह रहा है कि आओ चलो।
उन्हें कहो अभी आती हूँ।
इंजीनियर रूही ने कल तुम्हें मुझे और मेहंदी को पेंटिंग एग्जीबिशन में बुलाया, मैंने जितना भी मेहंदी से कहा कि आओ चलो नहीं मानता है, तो मुझसे बात करोगी क्या?
रूही साहब कौन है?
हमारे ऑफिस के बॉस, वही जिससे मेहंदी आकर मिला था।
अच्छा,
मेहंदी को आने के लिए राजी करोगी क्या?
पर मेहंदी आजकल बहुत मसरूफ है।
अच्छा तो कम से कम तुम आ जाओ।
मेहनू जान तुम तो जानते हो मैं मेहंदी के बगैर कहीं नहीं जाती।
लेकिन मुझे अकेले बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा।
घर में इतने मसाइल हैं और तुम्हें अपने मजे की पड़ी हुई है।
अम्मी जान एग्जीबिशन मेरे न जाने से आपका कोई भी मसला हल नहीं होगा, ठीक है?
परस्तु बेटा उसके साथ चली जाओ, उस मर्द के साथ वो अकेले कहीं ना जाने पाए।
किसके साथ?
उसी ऑफिस के बॉस के साथ। चंद रोज पहले मैंने सुना टेलीफोन पर समाना से कह रही थी कि उस आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। कल कला को उस ऑफिस में मेहरनूज के बारे में लोग हजारों बातें बनाएंगे।
ठीक है हमी जान, मेहंदी ना भी आए तो कल मैं मेहरनूज को अकेला नहीं छोड़ूंगी, उसके साथ चली जाऊंगी, परेशान ना हो।
अभी से उसे कह दो कि कल अकेली ना जाए।
अभी नहीं कह सकती क्योंकि समझ जाएगी कि आप ही ने मुझसे कहा है। कल उसे फोन करती हूँ मेहदी को पहले बता दूं?
देखो बेटी, जरा ये समझने की कोशिश करना कि यह आदमी जिसे ये इंजीनियर इंजीनियर कहती रहती है कैसा आदमी है। मुझे तो कुछ मशकूक सा लगता है। चंद दिन पहले मैंने खुद अपने कानों से सुना, रात गए मेहरनूश के साथ फोन पे बात कर रहा।
मेहदी तो कह रही थी उनकी उम्र बहुत है।
सदके जाऊं बीबी, इंसान है ना, उम्र की कमी ज्यादती से कुछ नहीं होता।
परस्तु चले, देर हो रही है अम्मी। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज मेरी जान।
बेगम मैं इंतजार कर रहा हूँ।
अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ।
खुदा हाफिज मेरा बच्चा, अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा।
खुदा
अपना ख्याल रखना।
अच्छा जी, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
घर से बाहर आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ।
ये कौन सा ड्रामा रचाया है?
अभी छोड़ो, बाद में इस बारे में बात करेंगे।
परस्तु सब जानती है, मेरी बात का जवाब दो, ये तुम्हारा कोई नया ड्रामा है क्या?
भाईजान ये वाकया कई हफ्ते पहले का है, इन मसाइल के पेश आने से पहले।
अच्छा तो ऐसा करो, असली साहब को फोन करो, कोई बहाना बनाओ और बात खत्म करो।
लेकिन कैसे?
मैं क्या जानू, उन्हें अपना असल मसला बता दो।
भाईजान कसम से मेरे लिए बुरा हो जाएगा।
तुम्हारे लिए क्यों बुरा हो जाएगा?
अरे बुरा हो जाएगा ना भाभी जान, आप बताइए ना, बुरा हो जाएगा?
अरे मेहदी ये ठीक कह रहा है ना, अबू ने रिश्ता मांगने की तारीख तय कर दी है, तो अब ये क्या कर सकता है?
बस तू ऐसे बात कर रही हो जैसे जानती नहीं कि मेहरान को किन हालात का सामना है।
मैं जानती हूँ, वो तो नहीं जानते। जब उन्होंने रिश्ता मांगने की तारीख रख दी, ऐसे में मेहरान इनकार कर दे और कहे कि अब नहीं आ रहे, तो वो समझेंगे पशिमान हो गए हैं, तो बुरी बात है ना।
मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं। क्या ये अपनी हकीकत छुपा सकता है? लड़की तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हें जल्द या बदेर जेल जाना है।
मुझे खुद लड़की को बताना था जो मैंने बता दिया।
बता दिया? यानी तुमने नाज़नीन साहिबा को बता दिया कि तुम्हारे साथ क्या हादसा पेश आया है, फिर भी उन्होंने तारीख तय कर ली है?
हाँ, सारा किस्सा बता दिया, उसे कहा कि मैं बेकसूर हूँ, कहा कि मेमारियान नाम के एक आदमी ने मुझे धोखा दिया है।
मेहरान तुमने मुझे अंधेरे में रखा, मुझे भी धोखा दिया तुमने।
नहीं भाईजान, आप क्यों ऐसा सोचते हैं? मुझे बहरहाल नाजनीन को हकीकत बतानी थी, उससे छुपाना मुमकिन नहीं था। अगर मैं एक साल के लिए जेल जाता तो वो समझ जाती।
यानी तुमने ये सारी बातें नाजनीन से की और उसने कहा कोई बात नहीं आप रिश्ता मांगने आइए?
इतना आसान भी नहीं था।
मेहदी ये बता चुका है ना।
जब मैंने उसे बताया तो नाराज हो गई, लेकिन जब सारी हकीकत बताई तो कायल हो गई, लेकिन कहा कि हमारी फैमिली में किसी को इस बात का पता नहीं चले। तय किया कि जेल जाने के टाइम सबसे कहें कि मैं एक साल के लिए तेहरान से बाहर जा रहा हूँ।
मतलब तुम उसकी फैमिली को धोखा देना चाहते हो, हैं?
मेहदी मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, अगर उसके घर वालों को पता चल गया तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी।
तो इसीलिए अब एक और फ्रॉड करना चाहते हो, हैं?
मेहदी,
अरे इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करने जा रहे हो। तुम जानते हो कि क्या कर रहे हो, तुम अपनी मुश्तरका जिंदगी की इब्तिदा कैसे कर रहे हो। गलती है, गलती है
मेहदी, ये मेरी इज्जत बचाने का वाहिद रास्ता है।
तो अब्बू की इज्जत का क्या बनेगा? हाँ बताओ, हमारे अब्बू की इज्जत क्या होगा?
इस तरह से सबकी इज्जत महफूज हो जाए, घर वालों की। और मैं जब एक साल के लिए जेल जाऊंगा तो सबसे कह देंगे बंदरगाह गया हूं मैं।
खुदा की कसम, तुम्हें अपनी फैमिली की इज्जत कोई फिक्र नहीं, सिर्फ उस लड़की को हासिल करने की फिक्र में हो। जानते हो सबसे बड़ी बेइज्जती कब होगी? जब असली साहब को पता चलेगा कि सारा माजरा क्या है।
नहीं पता चलेगा, यानी नहीं चलना चाहिए। अगर अब्बू या असली साहब को पता चल गया तो उनके सामने मैं अपना सर ऊंचा नहीं कर सकूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे इस वक्त किसी से भी कहूंगा तो मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, जैसे आप खुद मुझे धोखेबाज कह रहे हैं।
तो क्या ये सही है कि तुम अपनी जिंदगी को बर्बादी से बचाने के लिए अपनी फैमिली की जिंदगी को बर्बाद कर दो? मैं तो हैरान हूँ कि ये नाजनीन कैसे तुम्हारे साथ इस बात में शरीक होने पर तैयार हो गई।
भाईजान, खुदा की कसम, मैं और नाजनीन एक दूसरे के बगैर तबाह हो जाएंगे, हमारे लिए जिंदगी बेमानी हो जाएगी। मेहंदी, मेरी मदद करें, बस यही एक दफा आपसे इल्तिजा करता हूँ। मुझे खुद नाजनीन के साथ जिंदगी गुजारनी है, इसलिए उसको सारी हकीकत बता दी है। उसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, उसने मेरी गलती पर मुझे माफ कर दिया। तुम भी मेरी गलती की वजह से मेरी जिंदगी को तबाह मत होने दो।
मेहरान भाई, मेरे प्यारे भाई, मैं कुर्बान जाऊं, मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी देने को तैयार हूं ताकि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो। लेकिन ये कोई छोटा मसला नहीं है कि इतनी आसानी से उसे छुपा सकोगे। फर्ज करो 2 महीने 3 महीने बाद उनको किसी तरीके से पता चला या किसी ने आके बता दिया, तो तुम उस फैमिली के सामने अपना सर कैसे ऊंचा रख सकोगे? बताओ, नाजरीन अपने माँ बाप से कैसे आंखें मिला सकेगी? बताओ,
उनको पता नहीं चलेगा, नहीं चलने दूंगा, वो मुझ पर छोड़ दें। भाई बस सिर्फ यही एक बार मेरी मदद करें, मैं वादा करता हूं कि जिंदगी में आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा।
मैं फिर भी कहता हूं मेहरान, ये बहुत बड़ी गलती है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं रिश्ता मांगने भी नहीं जाऊंगा।
लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप ना हो भाभी जान, आप ही कुछ बताएं ने?
मैं तुम्हारे झूठ में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन चुप रहूंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, अगरचे जानता हूं ये भी गलत है।
लेकिन भाई अगर आप नहीं आएंगे तो अम्मी को शक हो जाएगा।
तो हो जाए, होने दो।
अम्मी अब्बू से कहो इन हालात में चूंकि ये रिश्ते के हक में नहीं इसलिए नहीं जा रहे, हकीकत नहीं बताएंगे क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहते।
मेहरान, ये वाहिद काम है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
हमीद साहब, हमीद साहब।
अरे क्या हो गया?
हमीद साहब, हमीद साहब,
क्या काम है?
अरे उठिए अभी, मोहसिन साहब ने आपको यहाँ देखा तो नाराज हो जाएंगे। उठिए भाई उठिए। योली मौला।
अरे मैं यहाँ कैसे पहुंचा?
उठिए, शाबाश।
ये कौन सी जगह है?
या अल्लाह। उठो चले।
उनसे नहीं कहना कि मैं यहाँ सोया हुआ था।
ठीक ठीक।
मेहदी जान, मेरे बेटे कभी भी दूसरों की लड़ाई में दखल मत दो। इसी हमारी गली में हमारे एक हमसाए के बेटे ने दो अफराद की लड़ाई में बीच बचाव की कोशिश की, उसी को धक्का लगा, सर फर्श से टकराया और कोमे में चला गया। अब उसकी बीवी बेचारी और चार छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं।
किसका कह रही हो?
यही हमारी हमसाई सफिया बेगम के बेटे का।
हाँ बेटे, ऐसे मौके में पुलिस को फोन करना चाहिए। माशाल्लाह तुम सब की जेबों में एक एक मोबाइल तो होता ही है।
जी दादा।
सलाम सबकी सुबह खैर।
सलाम अलैकुम। सलाम खुश अखलाक डॉक्टर साहिबा।
अलैकुम सलाम पप्पी जान।
मेहदी तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है?
अरे कुछ नहीं हुआ है, कल रात को दूसरों की लड़ाई में दखल दी, उन्होंने भी इसका खूब शुक्रिया अदा किया।
कहाँ पर? मेहदी बेटा तुमसे कुछ पूछ रही हूँ।
कुछ नहीं हुआ फूफी जान, बाद में किस्सा सुना दूंगा।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
बेटा तूबा कहाँ है?
तूबा सो गई।
आज जरा अस्पताल आ जाओ मुझसे मिलने।
नहीं फूफी जान जरूरत नहीं है, रात से अब तक बहुत बेहतर हो गया वो।
ठीक है जरूर आना, तुम्हारा एक मुकम्मल चेकअप जरूरी है।
ठीक
है। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
हुमा।
जी अम्मी जान।
अरे तुम्हारी पोपी सही कह रही है, तुम्हें जाके एक्सरे लेनी होगी, डॉक्टर को दिखानी होगी, खुदा न खास्ता सर या आंख वगैरह पर गहरी चोट ना आई हो।
ठीक है दादा जान। ठीक है।
सलाम मेहरनूश।
सलाम अलैकुम परस्तो, तुम कैसी हो?
ठीक हूँ शुक्रिया। मैंने फोन किया तुम्हें ये बताने के लिए कि आज मैं आऊंगी। ठीक है।
अच्छा और मेहदी?
नहीं मेहदी को तो काम है, नहीं आ सकते।
ओहो काश मेहदी भी आ जाता, क्योंकि इंजीनियर साहब को बहुत अच्छा लगता, बहुत बुरा हो जाएगा।
क्या करें अब उनको काम पेश आ गया। कितने बजे शुरू होगा?
4 बजे।
ठीक है तो एड्रेस मुझे भेज देना, मैं खुद ही पहुँच जाऊंगी।
ठीक है भेज दूंगी। चलो ठीक है, आने के लिए शुक्रिया।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
तशरीफ लाइए।
माफ कीजिएगा, आपके लिए चाय लाने के लिए कहूँ?
नहीं शुक्रिया। आप एग्जीबिशन में जाएंगी ना?
जी जी।
और हाँ मैडम यासरी का कार्ड उन्हें दे दिया।
इंजीनियर साहब माफ कीजिएगा, तो मैं तो बिल्कुल भूल गई थी, लेकिन अभी फोन करके मैं कह देती हूँ। ठीक है
कोई बात नहीं, जल्दी ना करें, कोरियर के जरिए भेज दीजिए।
ठीक है अभी उनको इत्तला देती हूँ माजरत के साथ।
उठा क्यों नहीं रही हो बेटा?
बात नहीं करना चाहती मैं।
इस्माइल है?
नहीं मेहरनोश है।
किस लिए जवाब नहीं दे रही है, झगड़ा हुआ है क्या?
नहीं अम्मी,
اسماعیل سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ قطع تعلق کر لوں گی.
کس لیے؟
بتا تو دیا ہے نا، کہتا ہے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی.
اچھا کیا بیٹا، جب دیکھو کہ تمہارا شوہر کسی چیز پر حساس ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. مشترکہ ازدواجی زندگی یہی ہے کہ دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے.
فی الحال تو صرف میں ہی کمپرومائز کر رہی ہوں.
یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بیٹا، کاموں کو ادھورا مت چھوڑاؤ. اٹھو، اسے فون کرو، کہہ دو کہ میرے شوہر کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کی اجازت کے بغیر فون کروں تمہیں.
چھوڑیے، جواب نہیں دوں گی تو خود ہی سمجھ جائے گی.
کیسے سمجھ جائے گی؟ نہیں سمجھے گی. اٹھو، فون اٹھاؤ اور اسے کہہ دو کہ میرے شوہر کو اچھا نہیں لگتا.
السلام علیکم. اتنی دیر کیوں ہو گئی؟
وعلیکم السلام. کیا کروں، جلدی آنا چاہ رہی تھی. توبہ نے اتنا رونا دھونا مچایا کہ اسے سلانا پڑ گیا کہ کہیں دادی کو نہ تنگ کرے.
ارے ان کو آتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے.
کن کی بات کر رہی ہو؟ تم نے تو کہا تھا صرف تمہارے باس ہیں.
انجینئر کے علاوہ ان کی بیٹی اور ان کی بیٹے کا منگیتر بھی ہے.
اچھا تو تم اندر چلی جاتی نا، میں آ کے تمہیں ڈھونڈ لیتی.
میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ دیکھے کہ میں اکیلے آئی ہوں.
تم تو کہہ رہی ہو کہ ان کو دیکھا.
ارے ان کو تھوڑی دیکھا، ان کی گاڑی کو دیکھا ہے دروازے پر.
اچھا زیادہ گھبراؤ نہیں، جا تو رہے ہیں. یہ جگہ کتنی پیاری ہے.
ہاں دیکھو تو ذرا، بہت خوبصورت ہے.
بہت.
وہ ہیں.
اچھا تو روحی صاحب یہ ہیں.
ہاں اب ان کی طرف ایسے مت دیکھو.
تو اکیلے کیوں آئے ہیں؟
پتا نہیں. آؤ میں تمہارا تعارف کرواتی ہوں. السلام علیکم انجینئر صاحب.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟
بہت شکریہ، یہ میری بھابھی ہیں.
جی جی، بہت بہت خوش آمدید، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی.
خوشی ہوئی.
انجینئر صاحب، یاسمن میڈم نظر نہیں آ رہی.
ہاں یاسمن کو ایک ضروری کام پیش آیا ہے، وہ کسی اور دن انجینئر فخر کے ساتھ دیکھنے آئیں گی.
اچھا
مہندی صاحب کہاں ہیں؟
اصل میں ہمارے مہندی کو کوئی کام آ گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ میری طرف سے بہت زیادہ معافی مانگ لینا.
کوئی بات نہیں، بہرحال آپ نے مہربانی کی یہاں تشریف لا کر.
کوئی بات نہیں.
اچھا آپ ٹھیک ہیں؟
بہت شکریہ.
یہ جگہ آسانی سے مل گئی نا آپ کو؟
جی.
اچھا تشریف لائیے. گیلری کو دیکھنے سے پہلے یہاں ایک ہلکے سے ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے. آپ چائے لیں گی یا کافی؟
کافی پلیز.
کافی. آپ؟
مجھے کچھ نہیں لینا، شکریہ.
اچھا یاسر صاحبہ نہیں آ رہی ہیں؟
یاسر صاحبہ اصل میں ان کو ڈھونڈ ہی نہیں پائے، انہوں نے فون کا ہی رپلائی نہیں کیا.
اگر مجھے علم ہوتا کہ فرمان صاحب نہیں آ رہے ہیں تو آپ کے لیے آفس کی گاڑی بھیج دیتا.
نہیں شکریہ، ہم آسانی سے پہنچ گئے.
یہاں پینٹنگز بیچتے بھی ہیں؟
جی آرڈر لیتے ہیں.
بہت ڈیشنگ ہے نا.
ڈیشنگ کسے کہتے ہیں؟ کتنی خوبصورت اور آرٹسٹک ہے واقعی میں.
ان کو تھوڑی کہہ رہی ہوں میں، انجینئر روحی کو کہہ رہی ہوں.
اچھا اب اس طرح سے ان کی طرف نہیں دیکھو، سمجھ جائیں گے. ان کے ساتھ ان کی بیوی ہے؟
نہیں یار، بیوی کو تو طلاق دے چکے ہیں.
کس لیے؟
ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے باہر جانے کو اپنے شوہر پر ترجیح دے دی. کہتے کہ ہمیشہ ایک پاؤں یہاں اور ایک پاؤں باہر رہتا تھا، آخر کار باہر رک گئی اور کبھی واپس نہ آئی. بیچارے انجینئر صاحب، ہے نا؟ بعض مرد بہت بدقسمت ہوتے ہیں، مجھے تو ان پر بہت رحم آتا ہے. تصور کر لو ایک فرد کو اپنی فیملی سے اتنی محبت ہو لیکن اس کی فیملی صرف اس کے پیسے کے لیے اس کے ساتھ ہو.
تمہیں یہ ایک طرفہ فیصلہ نہیں سننا چاہیے. کیا تم ان کی بیوی سے ملی ہو؟
ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک فرد جو سب کچھ چھوڑ کے باہر جاتا ہے اور خوش و خرم زندگی کرتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ کیسا فرد ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ حتیٰ بنیامین کو اپنے باپ سے بات تک نہیں کرنے دیتی.
بنیامین کون ہے؟
انجینئر صاحب کا بیٹا، یاسمان کا بھائی.
تمہیں اس آفس میں گئے بہت کم عرصہ ہوا ہے لیکن روحی صاحب کے بارے میں بہت کچھ جان گئی ہو.
ارے پرستو، یہ وہ باتیں ہیں جو آفس میں سب جانتے ہیں. یقین مانو میں نے بھی اپنے کلیگ سے سنی ہے.
ہم.
देखो अब जब यासमान साहिबा नहीं आए तो कहीं इंजीनियर साहब को हमसे ये उम्मीद ना हो कि हम उनके साथ जाकर पेंटिंग्स देखें। हाँ परस्तु हमारा ये काम बुरा तो नहीं है।
कौन सा काम?
ये है कि इंजीनियर साहब को अकेला छोड़ दिया है।
बुरी बात तो यह है कि हम आर्ट गैलरी आए हैं, तुम्हारी तवज्जो हर तरफ है सिवाय इन पेंटिंग्स के जिन पे इतनी मेहनत हुई है।
साफ जाहिर है इंजीनियर साहब हमारे अलावा किसी को नहीं जानते हैं।
फिक्र नहीं करो, कम अज कम उस खातून को तो जानते ही हैं।
मैं तो कहती हूँ परस्तों कि आओ हम भी उसी तरफ चलते हैं, तीनों मिलकर पेंटिंग्स देखें ताकि वो भी अकेले ना हो।
देखो मेहनूश, मैं इसलिए आई हूँ कि तुम तन्हा ना रहो, इसलिए नहीं कि उनको तन्हाई से निकालूं।
कितनी खूबसूरत पेंटिंग है।
क्या बात है, आखिरकार तुम्हें भी पेंटिंग नजर आई। अम्मी का फोन है, मैं अभी आती हूँ। सलाम अम्मी जान, आप ठीक हैं? खुदा का शुक्र हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जानती हूँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन कुछ अरसे से हम बहुत मसरूफ रहे। यकीन मानिए दो दफा मेहदी के साथ आने का प्रोग्राम तय किया, लेकिन हर दफा कुछ ना कुछ पेश आ गया।
लगता है हमारा हुनरी ज़ौक भी बहुत मुश्तरक है, क्योंकि इस फनपारे ने मुझे भी बहुत मुतासिर किया और तुम भी बहुत टाइम से इसके सामने खड़ी हो।
जी वाकई में बहुत खूबसूरत और आर्टिस्टिक है।
हाँ आइए अंदर से देखते हैं इसको। इसको पूछा कि उन्होंने कहा कि बिक गया है, वरना आपके लिए खरीद लेता।
बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, लेकिन एहतमालन इस फनपारे की कीमत बहुत ज्यादा होगी।
तो किस्तों में आपकी तनख्वाह से काटता रहता।
इस तरह से तो मुझे सारी उम्र आपके ऑफिस में काम करना होगा।
इससे बेहतर और क्या हो सकता था। मेरे ख्याल में एक फनपारे की कोई कीमत मुतय्यन नहीं की जा सकती। हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक उसकी कीमत लगाता है और हर इंसान उसकी अलग कीमत लगाता है। मैं समझा कि आप फरमन साहिबा को अकेली छोड़ के चली गई और बगैर खुदाहाफिजी के तशरीफ ले गई।
नहीं मैं बाहर गई कि किसी को तकलीफ ना हो।
अच्छा मैंने एग्जीबिशन देख लिया है, मैं बाहर आप लोगों का इंतजार करूंगा ताकि आप लोग को छोड़ दूं।
नहीं बहुत शुक्रिया, हम आपको जहमत नहीं देते।
मैं तकल्लुफ नहीं कर रहा हूं, मैं इस वक्त बिल्कुल फारिग हूं।
अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है, हम भी चलें?
मैंने तो अभी आधी पेंटिंग्स भी नहीं देखी।
मुझे जल्दी नहीं है, मैं बाहर आपका इंतजार कर सकता हूं।
नहीं हम खुद ही चले जाएंगे तो ज्यादा ही बेहतर रहेगा।
अच्छा ठीक है, फिर मैं अब चलता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
हमें भी खुशी हुई।
खुदा हाफिज़ फरमान साहिबा।
खुदा हाफिज़। तुमने ऐसे लहजे में क्यों बात की उनसे? यकीन करो वो खुद ही मेरे पास आए थे, मैं तो यहाँ पर थी।
तो फिर अच्छा किया मैंने उनसे इस लहजे में बात की।
परस्तु जान तुम बहुत ज्यादा ही सीरियस हो रही हो। अरे मैं इंजीनियर रूही को हर रोज ऑफिस में देखती हूँ, मैं बात करते हैं एक दूसरे के साथ।
पर ऐसा लग रहा था जैसे बड़े अरसे से एक दूसरे से बात ही ना की हो।
तुम आज मुझसे कितने किनारे और तानों में बात कर रही हो।
इसलिए कि तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है। इंसान जब अपने ऑफिस में अपने कुलीग से बात करता है उसमें और आर्ट गैलरी में आके बात करने में फर्क है।
लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ आई हूँ ना यहाँ पर।
हाँ पर पूरे टाइम उनकी तरफ ध्यान था।
मुझसे नाराज हो?
सच पूछो तो हाँ।
पर असु कसम से मुझे नहीं लगता था कि तुम इंजीनियर के साथ मेरे बात करने पर इतना हसास होगी, वरना तुमसे हरगिज नहीं कहती कि मेरे साथ गैलरी में आओ।
तुम्हारे ख्याल में मसला मेरी हसासियत का है या तुम्हारे बर्ताव का?
कैसा बर्ताव? मैंने तो सिर्फ इंजीनियर साहब से कुछ बातें की हैं, बस यही।
यही दो चार बातें बाइस बनती हैं कि लोग तुम्हारे पीछे तरह तरह की बातें बनाएं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नीयत साफ है, लेकिन क्या तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग भी ऐसे ही समझते हैं?
अब पुराना जमाना नहीं है कि अगर एक मर्द और औरत एक दूसरे के साथ बात करे तो लोग उनकी तरह सौ तरह की बातें करें और बुरे कस्म की चीजें सोचे। अब लोगों के अफकार में तब्दीली आ चुकी है।
और तुम्हारे अपने अफकार, क्या उनमें भी तब्दीली आई है? किसी गैर मर्द से इतना नजदीक होना और हंस हंस के बोलना तुम्हारे लिए कोई अहम नहीं?
इंजीनियर ही हमारे बॉस से कोई गैर नहीं है।
ना महरम तो है ना।
परस्तु इंजीनियर बहुत अच्छी शख्सियत वाले इंसान है। अगर इन कामों के पीछे जो तुम सोच रही होते तो उनके पास इतना ज्यादा पैसे कि कभी मेरी तरफ नहीं आते।
मेरा मतलब ये नहीं था। चूंकि रूही साहब बीवी से अलग हो गए हैं तो तुम्हें एहतियात करनी चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में गलतफहमी ना पड़े। तुम्हारा ये बर्ताव खुद रूही साहब के लिए भी गलतफहमी का बाइस बन सकता है ना।
कैसी गलतफहमी?
कोई सी भी, बस ये कि तुम्हारे इस मोहब्बत आमेज बर्ताव के पीछे कोई और मकसद हो सकता है। महनूश, प्लीज उनके साथ अपने ताल्लुकात की शक्ल बदलो।
अब तुम जाके ये बातें अम्मी से नहीं कर देना, वरना वो दोबारा हंगामा खड़ा कर देंगी।
एक शर्त पर कि तुम भी उस आदमी के साथ ताल्लुकात को बदल लो।
ठीक है
महनूश, लोगों की उम्र इस बात का बाइस नहीं बननी चाहिए कि जैसा हमारा दिल चाहे उनके साथ बात करें, वरना अचानक देखोगी कि खुदा न खास्ता इसी गफलत की वजह से ऐसी दलदल में फंस गई हो कि बाहर नहीं निकल सकोगी।
सार, तुम ठीक हो? क्या हुआ है?
कुछ नहीं।
डॉक्टर के पास चले?
नहीं, ठीक हो जाऊंगी।
कहीं इस आदमी से तो नहीं डर रही?
नहीं भाई, उससे क्यों डरूंगी? फरहाद की बातें याद आती हैं तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है।
क्या तुम अब भी मिलती हो?
उससे फोन किया था।
क्यों, किस लिए?
ऐसे ही सोचा मेरे साथ आए ताकि यानी मुझे तंग ना करे, लेकिन अपना टाइम जाया किया। अरे अरे अरे,
जैसे यह आदमी दो साल मेरा शौहर रहा हो। वो भी मेरी जिंदगी के बेहतरीन दो साल। कहा नहीं आऊंगा।
काश उसे फोन ना करती।
अरे यार, बता दो उसने तुमसे क्या कहा।
बता दूंगी। फिलहाल चलो, वो इंतजार कर रहा होगा।
यही है,
देखो फिर दरवाजे पे खड़ा है, बाछे भी खिली हुई हैं।
तुम बात नहीं करोगी, मैं बात करूंगी।
बुजुर्ग मेर साहब, अस्सलाम अर्ज़ है। बहुत बहुत खुश आमदी।
वालेकुम सलाम।
कैसी हैं आप? हमने 11 बजे तय किया था।
सहर कहाँ जाना है, मुझे काम है।
मुझसे नाराज हैं क्या? मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही हैं?
कहाँ दस्तखत करने हैं सूफी साहब?
आप हमें गाड़ी की मिठाई नहीं देंगी, आपकी तरफ हमारी एक दावत है।
मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया था। अब मेहरबानी करके इस रजिस्ट्रेशन ऑफिस का एड्रेस मुझे दे दें, मैं अपनी दोस्त के साथ जाके वहाँ दस्तखत कर दूँ कि आपको जहमत ना दूँ।
ठीक है। इत्तेफाक से मैं भी बहुत मसरूफ हूँ, आप एक मेहरबानी फरमाइए, मेरे अकाउंट में 5 मिलियन तुमान भेज दीजिए।
किस लिए?
तशरीफ रखिए। गाड़ी का मालिक 80 मिलियन से कम पर राजी नहीं हो रहा।
मुझे समझ में नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं।
उस आदमी ने हमारी दोस्ती की खातिर आपको 5 मिलियन की रियायत दी थी, आपने देखा ना, उसने कॉन्ट्रैक्ट में भी यही लिखा था, लेकिन अपनी बात से अब मुकर गया है, कहता है कि 80 मिलियन। हमें भी आपके सामने शर्मिंदा कर दिया।
ये क्या मजाक है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है?
यही तो बात है, अगर वो ऑफिस नहीं आया तो गाड़ी आपके नाम नहीं होगी।
ठीक है, तो मैं कल जाके उसके खिलाफ रिपोर्ट करवा
दूंगी। अगर आप रिपोर्ट और तहानों के चक्कर में पड़ गई तो बुरी तरह फंस जाएंगी। उस आदमी को अदालत में खींचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसलिए मैंने उसके अकाउंट में 5 मिलियन डाल दिए, आपके कागजात आपके नाम कर दिए और चला गया।
आपका बहुत शुक्रिया। तो मेहरबानी करके रजिस्ट्रार ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए।
जब आप वो 5 मिलियन तुमान मेरे अकाउंट में डाल देंगी तो सर आंखों पर गुस्ताखी माफ, मगर मैं सिर्फ किताब को वाजे करने की गर्ज से कह रहा हूँ।
अरे हमारे सामने ये ड्रामाबाजियां नहीं करो, हमने बाजार से मालूम कर लिया है, इस गाड़ी की कीमत 75 से भी कम है।
आप ये खातून कौन है? क्या मैंने आपसे मामला नहीं किया बुजुर्ग मेर साहब?
ये नाटक बंद करो वरना अदालत में खींच लूंगी।
ऐसा ना करें मोहतरमा, मैंने वादा किया था कि तुम्हारे लिए रियायत लूंगा, नहीं ले सका तो क्या तावान भी मुझे अपनी जेब से अदा करना पड़ेगा? मैडम मैंने आपका बहुत लिहाज किया है।
आपको इसका लिहाज रखने की कोई जरूरत नहीं है, घूर क्यों रहे हो?
मैं तो इनको नहीं जानता मैडम, लेकिन आपसे ये तवक्को नहीं थी, आप एक बहुत अच्छी शख्सियत रखती हैं।
अरे चुप करो बाबा, अपने बकवास मुझे मत सुनाओ। अच्छी शख्सियत, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी इन बातों से मैं नाराज हो जाऊंगी कि मेरी कोई शख्सियत नहीं है? बोलो ना।
जाइए जाइए बाहर, ये इज्जतदार लोगों की जगह है।
हाँ, इसके मालिक को देखकर पता चल गया है कि कितना इज्जतदार है।
मैडम आप एक काम करें, 2-3 दिन बाद आकर गाड़ी मेरे नाम कर दें और अपना पैसा ले जाइए, फिलहाल चाबी रखिए और चलते
बाहर। तुमने हमें समझा किया है? या अभी सारा पैसा दो या रजिस्ट्रार ऑफिस का एड्रेस, वरना
क्या?
देखो जनाब, मैं जानती हूँ कि तुमने क्या सोच रखा है, लेकिन ये औरत बेकसो मददगार नहीं है और इस मुल्क में कोई जंगल का कानून नहीं चल रहा, ये तुम्हारी रोजी रोटी कमाने की जगह है।
आपने खुद ने तो कहा कि गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी मेरी, चाबी रखे और चलती बने, गाड़ी मेरी।
क्या पैसा तुमने दिया है जो गाड़ी मांग रहे हो?
बहुत शुक्रिया बुजुर्ग मैं साहिबा, ये मेरा शोरूम और काम की जगह है, आप समझ रही हैं?
मैं भी तो यही कह रही हूँ, अब समझे किससे पाला पड़ा है। देखो यहाँ पर हंगामा मत होने दो, 5 मिलियन तुमान की इतनी अहमियत नहीं कि तुम उसके लिए खुद को बदनाम करो, अपनी रोजी रोटी खराब नहीं करो।
देखें सूफी साहब, ये गाड़ी आप ही को मुबारक हो, मैं इसे खरीद कर बहुत पछता रही हूँ, आप ऐसा करें कि मेरा पूरा पैसा वापस कर दें और गाड़ी खुद ले लें, इसके बाद आप जहाँ कहेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस आऊंगे, वहाँ दस्तखत कर दूंगी।
मेरे पास इस वक्त 70 मिलियन नहीं है कि आपको दूं।
या पूरी रकम इसी वक्त दे दो या रजिस्ट्रार ऑफिस का एड्रेस, कितनी दफा कहूँ?
कैसे मिजाज हैं सूफी साहब?
ठीक हूँ।
आप अपना काम निपटाइए, मुझे भी जल्दी नहीं है अभी।
रजिस्ट्रार ऑफिस को फोन करता हूँ, कागजात आपके नाम कर दे, सड़क के नुक्कड़ पर 156 नंबर ऑफिस, लेकिन 5 मिलियन तुमान कर्ज है आप पर, खुद दे दें वरना मुझे और तरीके भी आते हैं।
मसला किस तरीके से?
मैं बता देता हूं आपको, अभी बाहर जाओ,
दफा हो जाओ।
जनाब माफ कीजिए।
अरे कोई बात नहीं, बड़ा गुंडागर्दी कर रही थी।
अरे छोड़ो, आओ चाय पीते हैं, कहीं जा रहे हो?
कॉफी पी लूंगा।
साफ लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, देखा जू ही मैं चिल्लाई मांग गया,
कितना गुस्से में था। देखा आखिर मैं क्या कह रहा था।
तुम डर गई हो?
इन जैसे लोगों से डरना चाहिए,
ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
काश मेरे घर का पता ना जानता,
ओह सहार, तुम भी तो हर किसी से डरती हो।
अरे अकेली हूँ भाई, फरहाद भी तो नहीं है। दरवाजे पर आकर शोर हंगामा खड़ा कर दिया तो हम साहब सब समझ जाएंगे।
मैं कहती हूँ आओ फरहाद के ऑफिस जाके खड़े होते हैं, वो नीचे आएगा तो उसके सामने गाड़ी में एक दो चक्कर लगाते हैं, चलें।
अरे छोड़ो भाई, तुम भी तो
ओहो, तुम्हें तो किसी चीज का हौसला नहीं है।